காமின், ஃபரிதா, டாக்டர். डॉक्टर, मैं तुमसे मुखातिब हूँ।
हाँ जी।
अरे, जब तुमसे बर्दाश्त नहीं होती है तो सुबारक क्यों पीते रहते हो?
क्या कह रहे हैं जनाब, पीना वीना कैसा, मैं तो टीवी देख रहा था।
अच्छा, क्या पीने का बोल रहा हूँ मैं? कुछ गर्म मेवे खा लो, तुम्हारी लाल टपक रही है।
जी अच्छा।
जी बाबा।
रामीन से कहो अपनी माँ को व्हील चेयर में बिठा के नीचे ले आओ, और तुम भी अपने बच्चों को ले आओ।
क्या हुआ है बाबा?
जो कह रहा हूँ वो करो। ये बताओ मरियम कहाँ है?
रात का खाना बना के गई है।
अरे क्यों जाने दिया उसे? मेहमान आने वाले हैं, अब तुम्हें काम करना पड़ेगा।
जी अच्छा।
उठो और जरा हाथ मुंह धो लो, और तुम्हारी आंखें कैसी हो रही हैं? छी, उठो।
जी अच्छा।
चाचा जान, मैं सिर्फ ये देख के आता हूँ कि सबका हिजाब दुरुस्त है या नहीं। आप तशरीफ रखिए यहीं।
दादा जान, उता के वास्ते देर होने से पहले वापस लौट चलते हैं। यकीन कीजिए, ताया ने आपको सिर्फ इसलिए यहाँ बुलवाया है ताकि आप सबके सामने उनसे माजरत ख्वाही करें।
किस बात की माजरत?
उनके बेटे को गलत फहमी है, मैं क्या करूँ?
लाओ मुझे दो ये किताब।
जी नहीं।
तो फिर मेरा दिल खाली मत करो, सिर्फ खुदा को मद्देनजर रखो। कहीं लोगों की ऐसी आशाएं देखकर हसद की बिना पर यह न समझ बैठना कि हमारी बात खुदा की तरफ से है और उनकी बात शैतान की जानिब से।
जी मेरा ध्यान है।
और अगर उन लोगों ने तल्ख बर्ताव किया तो खुद पर काबू रखना और बदकलामी का जवाब बदकलामी से मत देना।
यहाँ तक कि मैं रब्बे अशरली सदरली पर रही।
आपका खैर मकदम करते हैं। खुश आमदीद, सब आपके मुंतजर हैं। तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। खुश आमदीद। वो मैं कह रहा था दीना साहिबा, आप अपना बम दे दीजिए, हम उसे फुस कर देते हैं।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद।
अरे फरीदा साहिबा, आप फल लेके क्यों आ गई अभी से? अभी इफ्तारी का टाइम नहीं हुआ है भाई। अरे चाचा तशरीफ रखिए, आप लिहाज क्यों कर रहे हैं? आइए दीना साहिबा, बहुत खुशी हुई हमें।
अरे आप हैं आगा साहब। अस्सलाम
वालेकुम।
खुश आमदीद।
अस्सलाम वालेकुम। सलाम दीना साहिबा।
जलील, तुमने बताया क्यों नहीं कि हाजी साहब और उनकी पोती हमारे मेहमान हैं? तुमने क्यों नहीं बताया शाहीन?
भाई बात का मजा खत्म हो जाता ना।
कौन सा मजा खत्म हो जाता?
अम्मी जान, अब जो हुआ सो हुआ। हमें सिर्फ इतना ही पता था कि हमारे पास कुछ मेहमान हैं।
आप खड़े क्यों हैं हाजी साहब? तशरीफ रखिए ना बेटा। दीना आओ ना, आइए उधर अपने भाई के पास बैठिए।
खूब कैसे हो मेरे अफसोस ज़दा और बेसहारा भाई? मेरे घर जो आए हो तो क्या वाकई खुला दिल लेके आए हो या नहीं?
दरअसल मैं इस बात को तरजीह देता था कि
दरअसल मैं
जलील, मुंह बंद करो तुम दोनों।
तुम्हें ये जबान के लुकनत का अर्जा कब से हो गया? मैंने कहा कहीं तुम जावेदियान को देख के घबरा तो नहीं गए हो? मैंने खुद ही कहा है कि शाहीन तुम्हें यहाँ ले आ, यहाँ जरा अपनेपन वाला मजमा है, हम आराम से बात कर सकते।
अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह क्या, खुश हो ना खुश हो, हार माने हुए हो, कैसे हो? मैं कहता हूँ अगर तुम पछता चुके हो तो मैं शाहीन से कह देता हूँ कि तुम्हें वापस ले जाए।
जलील, ये कैसा तरीका है बात करने का? अरे आप अब तक खड़े क्यों हैं? तशरीफ रखिए ना।
आपकी इत्तला के लिए अर्ज है बेगम साहिबा, मेरा ये छोटा भाई तब तक नहीं बैठेगा जब तक इसका बड़ा भाई इसे इजाजत न दे दे। देखो तो जरा, इसका सर झुका हुआ है और मुझे देखने की हिम्मत भी नहीं है। शर्माने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ, बैठ जाओ और अपनी बात करो, बैठो।
भाई मैं
क्या कहा? मैं जरा जोर से मैं करो। खलील देखो तो जरा, जलील, जलील जो सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखता था, तुम्हारी बात सुन रहा है। मैं चाहता हूं तुम सबको बताओ कैसा क्या हुआ है कि तुम तौफात में लिए मेरे घर मुंह उठा के चले आए। मेरा दिल चाहता है कि मेरी बीवी, बेटी और बेटों के अलावा मेरा दामाद और मेरी दो छोटे से पोते भी लफ्ज ब लफ्ज तुम्हारी बात सुने।
दादा जान, आप इजाजत दीजिए, मैं खुद इन्हें समझा देती हूँ।
खामोश रहो
भाई। ये काली चादर वाली कौन है जिसे तुम अपने साथ ले आए? देखी भाली सी लगती है।
अरे बाबा ये दीना साहिबा है ना भाई, चाचा की पोती। इंशाल्लाह आप लोगों की गुफ्तगू खत्म होने के बाद इनका भरपूर तारुफ भी हो जाएगा।
ये तुम्हारे उस कारीगर बेटी की बकाया जात है।
जी हाँ मैं वही हूँ। चचा जान मैं ये कहना चाहती थी कि
मैंने तुम्हारा सलाम नहीं सुना।
माफी चाहती हूँ लेकिन मैंने सलाम किया है।
खलील की तरबियत याफ्ता बच्चों से इसके अलावा और कोई तवक्को नहीं की जा सकती। बेटा वही बैठो और सिर्फ बड़ों की बातों को सुनो। हाँ तो तुम कुछ कह रहे थे, कुछ कह रहे थे जनाब सैयद खलील साहब। बेहतर ये होगा कि वहां से बताओ जो तुम कंपनी आए थे और जबान चलाई थी और उसके बाद के वाकयात।
बाबा ये सब क्या हो रहा है? अगर कंपनी वगैरह ही की बातें करनी थी तो फिर यहाँ पे
हम... दखल अंदाजी मत कीजिए, जब आपकी जरूरत होगी आपसे भी पूछ लूंगा।
भाई मैं माफी मांगने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ।
मैं कुछ समझा नहीं।
अगर आप इजाजत दें तो मैं समझा
दूं। नहीं मैं इजाजत नहीं दूंगा, पहले भी कहा।
मैंने सुना जो आपने फरमाया चाचा जान, लेकिन जब दादा जान को ये मालूम ही नहीं कि उन्हें किसके बारे में आपसे माफी मांगनी होगी तो वो समझा भी नहीं पाएंगे।
माफी चाहता हूँ दीना साहिबा, मैं हमेशा जरा देर से बात को समझ पाता हूँ। क्या फरमाया आपने वैसे?
दरअसल ये मैं हूँ जो माफी मांगने और कदरतों को दूर करने के लिए हाजिर हुई हूँ। अलबत्ता मैं माफी चाहती हूँ कि मैंने मौजू की वजाहत नहीं की थी आपके साहबजादे के हुजूर, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था कि आपको देख सकूं और हालात भी कुछ साजगार नहीं थे, इसीलिए मैंने मजबूरन उन्हें असली बात नहीं बताई थी।
कोई बात नहीं दीना साहिबा, अलबत्ता आपकी वही वजाहतें भी काफी होती। मैंने तो रास्ते में ही आपसे कहा था कि कदूरत तो बिल्कुल आने जाने वाली शय है, मगर बिलाखिर इंशाल्लाह सिर्फ अच्छाइयां ही रह जाएंगी।
ये वो ख्याल था जो आपने सोचा था शाहिन साहब। मैंने आपसे कहा था कि हम आपके बाबा को माफी मांगने और कदरतों को दूर करने के लिए देखें, बिल्कुल सही, लेकिन जहाँ वो अकेले हूँ। इसकी असल वजह ये थी कि जो मनफी जवाब मैंने आपको दिया था उसकी माजरत में सबके बीच में करूँ, ताकि इस बिना पे जो तकलीफें मेरे दादा जान को पहुँचा रहे हैं उनकी रोकथाम कर सकूँ। खुदा की कसम मैंने किसी दुश्मनी और किनिया व कदूरत की वजह से आपके बेटे को मनफी जवाब नहीं दिया था।
रीना बस भी करो।
दादा जान मुझे यकीन है, बल्कि मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि अगर मैंने शाहीन साहब को मुस्बत जवाब दिया होता तो उनका बर्ताव आपसे आज बिल्कुल ही अलग होता। अब अगर मेरी माजरत ख्वाही कदरतों को खत्म कर सकती है तो मैं यहीं पर सबकी आंखों के सामने आपसे माफी मांगती हूँ। यकीन कीजिए मैंने इसी तरह की नामुनासिब चीजों की बिना पर शाहीन साहब के रिश्ते का इनकार किया था। अलबत्ता मुझे नहीं मालूम था कि ये बात शाहीन साहब को इतना नाराज कर देगा कि फिर वो दादा जान की दुकान के खरीदारों को भगाने लगे। माफ कीजिएगा अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी।
दुकान की फरोख और भगाने का क्या माजरा है शाहीन, तुमने क्या किया है?
दीना साहिबा वैसे शाहीन के रिश्ते का मामला इतना भी संजीदा नहीं था।
ठीक है ना, अब सब कुछ वाजे हो गया है और दीना साहिबा ने भी माफी मांग ली है। मैं तो कहता हूँ आगा साहब अब बेहतर ये होगा
साहब, प्लीज आप इस मामले की सफाई पेश मत कीजिए।
मामा आइए आप अपने कमरे में चलिए।
जरा मैं भी तो देखूँ ये क्या चल रहा है। शाहीन मैंने तुमसे कहा था ना कि उसे छोड़ दो, तुम जाके अपने चचा को तंग करने लग गए।
भाई ये लड़की झूठ बोल रही है सरासर।
शाहीन
अरे भाई हम तो खामखा फंस गए भाई, जनाब मैं सबके सामने कसम खाने को तैयार हूँ, इसने ये सारी बातें रास्ते में खुद बनाई हैं। चचा जान आप तो झूठ नहीं बोलते ना, आप बताइए वो कौन था जिसे घर की तरफ आने का पता चला तो फौरन वापस चले की बातें करने लगी? हाँ क्या वो दीना साहिबा नहीं थी?
खुदा मेरी पोती को कभी माफ ना करे अगर उसने कुछ गलत बोला हो तो।
अरे वाह बहुत अच्छा लगा मुझे ये जो तुम्हारे सर से पांव तक वफादारी टपक रही है उसके तहत तुमने अपने प्यारे बेटे की औलाद का खूब फायदा उठाया है। क्या आखिरत बनाई आपने आगा सैयद खलील साहब? साहब लगता है तुम्हारे सारे बेटे सब के सब एक से बढ़कर एक और वफादार और चालाक हैं।
चाचा जान
दीना अगर मुझे मालूम होता कि यह किस्सा तुम्हारे घर तक।
कौन सा किस्सा? तुम्हारी चालाक पोती की मुआफी का किस्सा खलील साहब?
जाहिर है कि नहीं।
मतलब तुम रास्ते के बीच में अपने घर वापस नहीं जा सकते थे कि मामला यहां तक न पहुंचे?
मेरी पोती और मैंने काफी कोशिश की थी।
कोशिश की थी या तुमने ये सोचा कि मेरी बीवी बच्चों के सामने चंद मुट्ठी भर मुफ्तों की खातिर मेरी बेइज्जती करवा सकोगे?
ऐसा लग रहा है कि तुम भी यही चाहते हो मेरे भाई।
जाहिर है क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि इन बच्चों के सामने ये सुन सकूं कि तुमने मेरी पीठ पीछे किस किस को क्या कहा है।
मैं परेशान हूँ भाई, अभी भी तन्हाई में बैठने की मुहलत बाकी है।
बहुत खूब ठीक कहा चाचा जान आपने, बिल्कुल ठीक। रामीन उठो अम्मी को ऊपर ले जाओ। फरीदा साहिबा उठो बच्चों।
क्या तुम्हारी कुर्सी में कीले लगी हुई है जो खड़े हो जाते हो? बैठ जाओ
जी। अच्छा
आज ये देख रहा हूं कि मेरा सर झुका के फर्मा बर्दारी करने वाला भाई आज अपने बड़े भाई से बहस करने लगा है। ठीक है, हम मुआफी का किस्सा यहीं खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब जरा ये बताओ, किस लिए अपनी पोती के साथ साजिश के तहत मुझसे मिलने चले आए?
चाचा जान, ये मामला अब जहां भी खत्म होगा इसकी वजह आप और दीना साहिबा ही होंगे। उम्मीद करता हूं आपको मालूम हो आप क्या कर रहे हैं।
जलील, मैं यहां बहसबाजी और तुमसे हाजिर जवाबी करने नहीं आया हूं।
फजूल की बातें मत करो धोखेबाज खलील साहब, अभी मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि जिन्हें जबान की नरमी और चर्बी से धोखा दिया जा सके। हम उस वक्त भाई भाई और चाचा जान जैसे अल्फाज की लाज रख सकते थे कि जब बात मुआफी तलाफी पे खत्म हो जाती, लेकिन जो झूठ और मक्कारी का दामन थाम के मेरे घर में आए, मैं उसका ना तो भाई हूं और ना ही कोई और रिश्तेदार। अब तुम ये बताओ कि तुमने मेरे बारे में किससे क्या सुना है ताकि मैं तुम्हें जवाब दूं।
मैं ऐसी मासियत नहीं करता, लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि अपने घर वालों के सामने ऐसी बातें करो तो ठीक है।
ये मैं चाहता हूं
इसलिए नहीं आया हूं कि तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊं और दूसरों की बातें करो।
तुम फिर बातों को घुमा रहे हो हाजी साहब। तुम अपनी इन्हीं हरकतों के जरिए मुझे धमकी देने आए हो कि अगर मैंने तुम्हारी बातों पर अमल नहीं किया तो तुमने जो कुछ सुना है वो मेरी बीवी को बता दोगे। लेकिन तुम बेवकूफ हो जलील, तुमसे ज्यादा बड़े बड़ों के धमकाने के दबाव में नहीं आया। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर यही तंग करना और खरीदारों को भगाना जो तुम्हारी पोती कह रही है, अगर ये खुद मेरा काम होता तो कौन है जो मुझसे सवाल कर सके? आखिर कौन है जो मुझसे इसका जवाब मांग सके? इस घर से बाहर के हिसाब मांगने वाले? हाँ, तुम अपने काम से काम रखो, मुझे क्या धमकी देने चले आए?
तुम खामखा ये बातें कर रहे हो होशियार आदमी। तुम जिस चीज की तवक्को रखते हो वो नहीं सुनोगे।
हाय हाय, मेरे मुंह पे झूठ। यानी तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें यहां इसलिए खींच के लाया हूं ताकि जो चीज मैं नहीं कह सकता वो तुम्हारे सड़े हुए मुंह से अदा करवा सकूं? हाँ, तो फिर देखो तमाशा। मैं सबसे पूछता हूं, अगर मैं एक चोर लोगों का माल हड़प जाने वाला शख्स होऊंगा तो क्या इससे तुम लोगों को वास्ता है?
जलील, कम से कम बच्चों के सामने।
अच्छा है कि बच्चे भी सुने, ये लोग भी सुने। तुम बताओ डॉक्टर, अगर मैं कुछ बहादुरी, लिहाफ सीने वाले गफूर और महालूजी और काशानी वगैरह जैसे अफराद का हक खा जाऊं जो कि मेरे इर्द गिर्द सिर्फ इसलिए जमा होते हैं ताकि अपनी चालाकी के जरिए मेरी ज्यादा से ज्यादा तवज्जो हासिल कर सकें, तो तुम्हें कोई एतराज होगा इससे?
लेकिन आपने कभी नहीं खाया।
मैंने पूछा, तुम्हें कोई एतराज है?
जो हुक्म नहीं होगा।
तुम बतावा दिया, मेरी तरफ देखो, इधर देखो मुझे। अगर मैं तुम्हारे अलावा 10 बीवियां रखता हूंगा और फिर उनमें से एक का हाथ पकड़ के इस घर में ले आऊं, तुम एतराज करोगी?
बाबा, अब आप बात को बढ़ा रहे हैं।
तुम मुंह बंद रखो अपना, बल्कि तुमने अपनी गाड़ी से टक्कर मार कर उसे माजूर किया है। अब तुम ही बताओ मैं शाहरुखी पर दबाव डालूं और इसी महीने के आखिर तक उसकी बेटी से मैं खुद निकाह कर लूं तो तुम एतराज है? जवाब दो, मर्द बनो और बात करो, एतराज है तुम्हें? तुम बताओ फरीदा, अगर तुम्हारा बाप एक तुमसे भी छोटी उम्र की लड़की से शादी करके उसे इस घर में ले आए, तुम्हें कोई एतराज है?
ला इलाहा इल्लल्लाह।
आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? इस बात पे हैरान होके कह रहे हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह कोई जबान नहीं चलाता, जानना चाहते हो क्यों? जब मैं तुमसे मुखातिब हूं तो मेरी तरफ देखो। हां, इसलिए अगर मैं ना रहूं तो ये सब भूख से मर जाएंगे, फिर ना तो इनके पास रोटी होगी न पानी। ये लोग भी और वो सब अफराद भी जिनकी तुम सिफारिश करने आयो, और तुम खुद भी। मैं सच कह रहा हूं, अगर बचपन से आज तक तुम्हारी फिक्र ना करता तो आज तक तुम बीवी बच्चे वाले होना तो दूर, बल्कि आज तक तुम भूख से मर चुके होते और तुम्हारा कफन भी गल चुका होता। क्या ऐसा नहीं है?
फर्ज कर लें कि खुदा ने ऐसा चाहा होगा।
अगर खुदा ने ऐसा चाहा तो अपनी पोती की मक्काइयों का सहारा लेने वाले अब तुम्हारी मेहंदी में रंग नहीं है। मेरे ख्याल से जब तुम इतने से थे तो मैंने तुम्हें सिखाया था कि जब चार लोगों के बीच में हल्के पढ़ने लगो तो फौरन अस्तग़फिरुल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया करो। अब हमारी बिल्ली और हमी से भी आऊं? उठो और उस तोहफे को और अपनी पोती को भी ले जाओ।
हम ना तोहफा लाए हैं और ना ही किसी किस्म का दबाव डालने आए हैं। चाचा अब ये बातें बार बार मत दोहराइए और अगले को बोलने का मौका दीजिए।
तो फिर किस लिए आई हैं आप बलगया लिया? माफी मांगने आई हैं तो चलो मांगो। अच्छी वकील लाए हो अपने साथ खलील साहब, बेहतरीन वकील है। ठीक है हम सुन रहे हैं, अपना लतीफा सुनाओ।
दादा जान चले।
क्या मतलब है दीना साहिबा, आप यहां तक आ गई सिर्फ ये बताने के लिए कि किसी काम से नहीं आई है? ये क्या बात हुई?
जलील मैं सिर्फ खुदा की बख्शिश और उसके अजाब का खौफ दिलाने के लिए तुमसे मुलाकात को आया हूं।
हाजी साहब माफ कीजिएगा, मैंने ठीक तरह से सुना नहीं, आपने क्या फरमाया?
जलील देखो सिर्फ खुदा ही वो है जो मुकद्दर में लिखता है, लोगों के पास क्या हो और क्या ना हो। मेरी बातों का मकसद खुदा की आज की धमकी और कल खुदा के सवालों जवाब हैं। ये लोग जो आज तुम्हारे खौफ से या तुम्हारे मालूमता और पुष्पनाही गवा देने के खौफ से तुम्हारी हर बात पर खामोश हैं और तुम्हारी ताईद कर रहे हैं, ये हमारी उस माँ से ज्यादा दिलसोज नहीं है जो कल मैशर में खुदा के खौफ से अपने बेटों के नाम तक भूल जाएगी। जलील तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की कब्र की कसम है, इस अजीम महीने की और कुरान और इंजील और तौरात के नुज़ूल की कसम है, होश में आओ। जिसका हक तुमने खाया है वो लौटा दो ताकि खुदा के पास इन अजीम दिनों के अंदर तुम्हारी गलतियों को माफ करने का बहाना मौजूद हो। जलील खुदा की खुदाई की कसम, दुनिया का कब्रिस्तान ऐसे मकरूर लोगों से भरपूर है जो दुनिया में आए तो हाशिया नशीनों ने उनके कानों में यही जुमले कहे थे कि तुम खुदा के खास बंदे हो, लेकिन जब वो दुनिया से चले जाते तो सारी मखलूक की लानत मलामतें उनके साथ थी। जलील होश में आओ, जिंदा जावेद सिर्फ खुदा ही है, होश में आ जाओ क्योंकि अफसोस किसी के लिए भी अच्छा तो शेख आखिरत नहीं है।
आपका आवाज खत्म हो गया मौलाना साहब, आप चाहे तो लाइटें बंद कर दें, अच्छा समा हो जाएगा। मुंह बंद करो अपना, किस बात प्यास रहे हो? तुम्हें अभी तक लतीफे और संजीदा बातों का फर्क नहीं पता? मौलाना साहब तुम्हारी सारी नसीहतें कबूल हैं, सारी नसीहतें कबूल हैं, मुझे सिर्फ ये बताओ कि मैं तुम्हारी पॉकेट में कितना रखूं, आपस की बात है, तुम मेरी सिफारिश भी अपने खुदा से कर दो। मैं ये जानना चाहता हूं कि बकौर तुम्हारे खुदा ये चाहता है कि मेरे पास दुनिया रहे, तो अगर मैं ये चाहूं कि मेरे पास आखिरत भी हो तो मुझे इसके लिए कितने देने होंगे? हाँ लोग ये समझते हैं कि उनकी रजा ही खुदा की रजा है, मगर मैं जो कि ये जानता हूं कि खुदा की रजा तुम जैसों की रजामंदी है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि जन्नत अपनी तमाम तर रौनकों के साथ, अपनी तमाम तर रौनकों के साथ फी चेक कितने की पड़ेगी? दांत अंदर करो, अब तुम शुरू हो गए।
माफी चाहता हूं मैं
डॉक्टर साहब।
भाई फरीदा साहिबा, अब इंसान ये तो नहीं मान सकता ना कि आपके मोहतरम चाचा जान सिर्फ वाज और नसीहत के लिए यहाँ आए हैं।
आप खामोश रहे डॉक्टर
जी। अच्छा अम्मी जो हुकुम।
दादा जान मैं नहीं समझती कि अब हमारा यहाँ रुकना कोई मकसद रखता है।
दीना साहिबा माफी चाहता हूँ, वैसे आप हमारे वाले साहब को इतना तो हक दीजिए, हम समझ रहे थे कि आप नेकी के लिए आई हैं, मगर ये तो नहीं मालूम था कि आप अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकिन की सरकारी वजारत की जानिब से आई हैं।
आप अपने दिमाग पे इतना जोर मत दीजिए शाहीन, किसी को आपकी फहमो दराक की कुवत से इससे ज्यादा तवक्को थी भी नहीं। वैसे एक सादा लोग बुजुर्ग की बातों को समझने के लिए सादा होशियारी और समझदारी की जरूरत नहीं है।
तो फिर और क्या चाहिए हालिमा साहिबा? ईमान और अकीदा चाहिए होता है,
जरा सी शराफत भी काफी है चचा। दादा जान चलें।
दीना आपको नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही?
माफ कीजिएगा दीना साहिबा, हमने आपका हाथ मांगा है, यानी मांगा था ठीक, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आपका जो दिल चाहे हमारे घर वालों को बोल दें।
तुम चुपचाप बैठे रहो, या तो अपनी इस दाद देने वाली चेली को लेकर यहाँ से अभी के अभी दफा हो जाओ, या फिर मैं अपने बेटे से कहता हूँ उसकी लंबी जबान को उसके हालात।
चुप है मुझे खुदा की हिकमत पर, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी मिसाल उस पहाड़ किसी है जो दूर से बड़ाई का फेंकर है लेकिन करीब से देखो तो सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर है, कभी तुम्हारे दरवाजे पर आकर मैं नसीहत करने के लिए इतना बेचैन ना होता। वो सच कह रहा है दीना, अपनी जबान संभाल के बात करो कि ये शख्स काफी अरसे से किसी भी जात और शख्सियत की तौहीन करने में कोई खौफ नहीं रखता, मतलब कोई अकीदा ही नहीं बाकी रहा जिसकी खातिर इसे कोई खौफ या लिहाज हो।
तुम पागल हो गए हो या दिमाग सट गया है तुम्हारा? सब कुछ बोलने के बजाय मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं तो तुम्हें यकीन हो गया है कि तुम नसीहत करने के और मैं नसीहत सुनने के लायक हूं? किसे खुदा पर अकीदा नहीं है? हाँ, जरा एक नजर मेरे इस घर को देखो। ये मेरी जिंदगी का सिर्फ एक कोना है। ये बीवी है, मेरी पहली बीवी, बीमार है, मगर खुदा का शुक्र है कि अब तक सांस ले रही है। ये दोनों मेरे बेटे हैं और वो मेरी बेटी है। ये तीनों ही मेरे फरमाबरदार और ताबे हैं। वो मेरा दामाद है। वो दोनों छोटे से मेरे पोते हैं जो दूध, शहद और अंडा जब तक ना खा लें अपने स्कूल नहीं जाते। और ये रहा मैं, मोटा ताजा खुशहाल। अब तुम खुद को देखो और अपने इस होलिये को देखो और अपने उस घर को देखो जो किसी भी वक्त तुम पर और तुम्हारे घराने पर गिर सकता है। और अपनी इस यतीम पोती को तो देखो जो अपने आप को मेरे बेटे से जोड़ना चाहती है। अपने उस प्याला चोर बेटे, अपनी बीवी और उस बेटे को देखो जो सबके सब मर चुके हैं। अब जरा ये बताओ कि जिस खुदा का तुम ये समझते हो कि वो हमेशा तुम्हारे साथ होता है, असल में वो किसके साथ है, तुम्हारे या मेरे? अब बैठ के मुझे देखते ना रहो, जवाब दो मेरी बात का। बार बार ये मत कहो कि अल्हम्दुलिल्लाह और शुक्रान लिल्लाह। ये दो अल्फाज तो हर अरबी ना जानने वाला भी बोल सकता है।
खुदा की शान इससे भी बुलंद है कि वो मुझ गरीब के साथ हो या तुम जैसे अमीर के साथ हो। तुम अगर खुदा के साथ भी होते तब भी कोई कमाल ना होता। कमाल तो उसने किया है। खुदा के वापस लेने पर भी कहता है या अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रानिल्लाह।
खुदा रसूल की कसम खा सकता हूं जनाब सैयद खलील साहब, ये खाम ख्याली है, सिर्फ खाम ख्याली है। दुनिया से पीछे रह जाने वाले ऐ सादा लो इंसान, अगर मैंने तुम्हें आज तक कुछ नहीं कहा था तो सिर्फ इसलिए कि मैंने सोचा इसी खुशफहमी में तुम्हारी बाकी मानदा जिंदगी भी गुजर जाने दो। लेकिन आज जब कि तुम वाजू नसीहत करने चले आए हो तो मैंने सोचा कि आज बोल ही दूं। जानते हो खलील, तुम्हारा दूसरों से क्या फर्क है? वो लोग अपने खुराफात से दूसरों को बर्बाद करते हैं और अपनी रोटी पानी कमा लेते हैं, मगर तुम अपनी इन बातों से अपना भी नुकसान करते हो और अपने साथियों का भी। ये बताओ, तुम अपनी दुकान उस बेटे को क्यों नहीं दे देते कि जिससे तुम और तुम्हारी बीवी भी इफलाक से निजात पा जाओ और ये लड़का भी कुछ काम कर सके?
अगर मेरा बेटा मेरी दुकान मांगता तो मैं दो हाथ से उसके हवाले कर देता।
हाँ?
वो उन्हीं लोगों के पीछे है जिनका तुमने अभी जिक्र किया, वही लोग जो दूसरों का नुकसान कर देते हैं ताकि अपना भला कर सके। अगर उसे दुकान भी दे दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं पहुंचने की दौड़ में उससे भी गवा देगा। या तो अपने ताया के आगे पीछे घूमता रहेगा या बाप के पांव से पांव मिला के चलेगा।
अपने ताया के साथ चलना ठीक रहेगा या अपने बाप के साथ? हाँ, क्या बेहतर रहेगा? किस काम को फनकारी कहा जा सकता है? नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे यहां नसीहत करने नहीं आए हो। तुम अपनी शिकस्त खाए हुए लश्कर की इस बकाया जात के साथ यहां इसलिए आए हो ताकि मुझे और मेरे घर वालों को वाज सुनाओ, लेकिन दरअसल तुम हमें भी अपनी तरह लाचार बनाना चाहते हो। ये बताओ कि क्या बंदगी असल में बेनियाजी को नहीं कहते? अब मैं तो बंदगी कर रहा हूं, सबूत यह है कि उसने मुझे बेनियाज कर दिया है। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारी बेनियाजी कहां है?
मेरी मोहताजी और तुम्हारी बेनियाजी कहां है? मेरे दिल की बेनियाजी उस सब्र कनात की वजह से है जो खुदा ने मुझे दी है। तुम्हारी जेब की बेनियाजी हराम माल जमा करने की वजह से है।
मेरी बेनियाज जेब ने मेरे दिल को भी बेनियाज कर दिया है। तुम्हें किसने कहा कि मेरा माल हराम है? हां, बहादुरी बददहन या फिर उस खुदा ने जिसने तुम्हें मेरे पास ये कह के भेजा है कि मुझे आगे तुम ये बताओ कि बेनियाजी सब्र और कनात को कहते हैं? हां, जवाब दो मुझे।
खुदा की कसम आप सच कहते हैं चचा, मेरे दादा जान की इस कदर सब्र और कनात भी ठीक नहीं है। उस वक्त जबकि उन्हें ये मालूम है कि बाकी अफराद उनका हक मारे हों फिर भी ये खामोश रहते हैं।
ये लो भाई, अब्दुलन रानी की बातें भी सुनिए। तुम कौन से हक और हुकूक की बात कर रही हो? हां, जब रात को घर जाओगी तो अपने दादा जान से पूछना कि इस जलील ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया।
वो तब की बात थी जब आप खुदा को खुदा समझते थे और अपने आप को बंदा। उस वक्त अपनी जात को खुदा नहीं बनाया था आपने और लोगों के पहाड़ों पे अपना महल नहीं बनाया था आपने चचा। क्या आज आपने उस दुकान को देखा भी है जो मेरे दादाजान के आगे फेंकी है आपने?
फेंकी है?
देखिए अब बहुत हो गया है।
मैंने तुम्हारे आगे दुकान फेंकी है?
मेरी दुकान की बात नहीं हो रही।
अच्छा अच्छा, अब मैं समझा कि लिफाफे में क्या देना चाहिए हमें।
तो यूं कहिए ना कि खुदा के नाम पर और लोगों के हुकूक और नसीहत के बहाने चचा जान आए हैं ताकि अपना रोना रो सकें।
अरे बाबा, लगता है इन हजरात के लिए इस बात को समझना कुछ ज्यादा ही दुश्वार हो गया है। क्या यहाँ किसी को यह याद नहीं कि मेरे दादा जान की दुकान मार्केट में है जो कि लोगों की दुकान के सामने और नीचे की जानेब है ना? आप खुद अभी जाइए और ये देखिए कि उस दुकान में दीवारों की चटख कहाँ कहाँ तक फैली हुई है।
चटख? एक मिनट, तुमने जो दुकान इनको दी है वो चटख वाली थी? तुम दोनों जब लोगों को दुकानें दे रहे थे तो क्या उनकी दीवारों पर चटख थी?
ये कैसी बात है बाबा, कोई गलतफहमी हो गई होगी। यकीनन लोगों को अलमारी दीवार से लगानी होगी जिसे चटख पड़ गई होगी, वरना हमने तो कोई चटख नहीं देखी। देखी थी क्या? नहीं ना।
ये खेल तमाशे किस लिए हैं आखिर? ये बात रोजे रोशन की तरह वाजे है। अगर मैं मारे दुनिया पर बहस करूंगा तो तुम्हारी दुकान का भी कर्जदार हो जाऊंगा।
तो नहीं हो क्या? मान लिया कि तुम्हारी दुकान की दीवारें बैठ रही हैं और उन पर चार चढ़क के निशानात भी हैं, लेकिन ये कहाँ और तुम्हारी कचरा कुंडी वाली दुकान कहाँ?
बात मत घुमाओ। तुम खुद जानते हो कि अगर तुम सारी मार्केट को भी लिफाफे में डालकर मुझे दे दोगे तो मैं कबूल नहीं करूंगा। मैं फिर से कहता हूँ कि खुदा जानता है, तुम, मैं और तुम्हारे बेटे ये सब जानते हैं कि तुमने लोगों का माल खाया।
यहाँ बैठकर ये सारी बातें क्यों सुननी पड़ी? जबकि ये बात तो सारी दुनिया जानती है कि भाई, दोस्त और जानने वाले से मामला तय करने में ये अंजाम होता ही है।
तुम देख नहीं रहे हो क्या? मेरा भाई उन लोगों से भी कहीं ज्यादा छोटा है कि कोई झगड़ा वगैरह कर सके। मगर मैं भी अगर आज रात तुम सबके सामने से बेदस्तपा न कर दूं तो देखना। तुम्हें कैसे मालूम कि मैं लोगों का माल खा जाता हूं? हाँ, चलो इसको छोड़ो। तुम्हें इस बात की इतनी तसल्ली कैसे है कि खुदा भी जानता है? हाँ देखो, पिछली बार तुमने कहा था कि तुमने ख्वाब में बाबा को देखा है, इस दफा ये मत कह देना कि ख्वाब में जिब्राइल अमीन को देखा है।
क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब दाता जान आपके लिए कोई ऐसी दलील पेश करें जिससे साबित हो सके कि खुद अल्लाह की जानिब से भेजे गए हैं?
लो फिर ये मोहतरमा बीच में कूद पड़ी। ये बताओ, क्या तुम दोनों में ये तय हुआ था कि जहाँ भी तुम्हारे दादा जान हल्के पड़ जाएं, तुम कोई दूसरी बात बीच में ले और मौजू बदल दो?
क्या तुमने आज तक मुझसे झूठ सुना है?
सच पूछूं तो हमारे बचपन में तुम एक तीर कमान से चिड़िया को मारते थे और फिर कहते थे कि बाबा से कहना कि तुमने नहीं मारी।
चलो अगर मैं कसम खा लूं और ये कह दूं कि तुम्हारे और रामीन और इर्द गिर्द के लोगों के अलावा कोई है जिसका नाम भी तुमने नहीं सुना है?
मसलन कौन? बहादुरी, सैयद गफूर, या वो माजूर शाहरुखी, या ये रामीन जो यहाँ बैठा हुआ है?
ऐसा शख्स जिसका नाम आज तक तुम लोगों ने सुना ही नहीं होगा।
तुम समझे नहीं मैंने तुम्हें क्या कहा बुढ़े?
क्यों नहीं समझ गया?
अगर तुम्हारे पास मेरे इन जुराइम को साबित करने के लिए कोई सनद, सबूत या गवाह होता तो उसे जरूर लेकर आते।
मतलब तुम नहीं समझे कि मैं क्या कह रहा हूं? मैं खुदा की खुदाई की कसम खा के कहता हूं, तुमने लोगों का हक गजब किया है। मैं कसम खाता हूं कि तुम्हें खुदाए हय सुभान पर जरा सा भी अकीदा नहीं है।
मैं भी कसम खाता हूं कि तुम फिर से बचपन की तरह झूठ बोलने और कसमें खाने वाले हो गए हो और मुझे इसकी खबर नहीं है।
जलील, अपनी और इस दुनिया की आकिबत से डरो, उस खुदा का खौफ करो जिसने तुम्हें इसलिए ढील दी हुई है ताकि तुम्हारे मातहतों का इम्तिहान ले।
अब इतनी बड़ी मजलिस मेरे सामने मत पढ़ो बुढ़े। तुम भी डरो उस दिन से कि जब तुम सर उठाओ और ये देखो कि तुमने सिवाय तोहमत और इल्जामात के अपने भाई को और कुछ नहीं दिया। डरो उस दिन से कि जो दिन अगर मेरे जैसों के लिए खौफ का दिन होगा तो तुम जैसों के लिए वो हैरत का दिन होगा। जिस दिन खुदा का हिसाब किताब सामने आ जाएगा और ये वाजे हो जाएगा कि खुदा का मामला मेरे और तुम्हारे जाविये से इतना अलग है जितना एक तोमान का एक लाख तोमान से फर्क है, कि ये समझते हो कि खुदा तुम लोगों की हिमायत करता है
अब छोड़ भी दो इन हवाई बातों को कि किन लोगों ने क्या क्या कहा है तुम्हें।
कहा कि किसी ने मुझे कुछ बताया है, मैंने कहा ले जाके दिखाया है मुझे।
इससे मत सुनाओ मौलवी, ये बातें मेरे लिए हुज्जत नहीं है। इतना बताओ कि तुम्हें कैसे मालूम कि खुदा तुम्हारे साथ और मेरे साथ नहीं है। बस
तुम समझे नहीं, अगर यही होना होता कि पर्दे हट जाएं और ये पता चल जाए कि कौन खुदा के साथ है, तो फिर कयामत के दिन के कोई माने ही नहीं रहते। कल बरोज कयामत ये पता चलेगा कि कौन खुदा के साथ था और कौन इस गलत फहमी में मुब्तिला था कि वो खुदा के साथ है, और कौन खुदा के साथ होने का ड्रामा कर रहा था। चलो दीना।
अरे तुम जा रहे हो?
मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। मैं तुम्हें ये साबित करने नहीं आया हूं कि खुदा में से किसके साथ है। मैं काम इलाही और आयात के हुक्म के तहत तुम्हें ये कहने आया हूं कि होश में आओ। बस
फिर मुझे भी इजाजत दो कि इन्हीं आयात और अहकाम इलाही के तहत तुम्हें होश में लाऊं। उसके बाद जाना। मैं जलील ना होऊंगा अगर मैंने तुम्हें जगाए बगैर जाने दिया। तुम कह रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं। तुम कहते हो कि तुम सच्चे हो और मैं झूठ बोल रहा हूं और मैं लोगों का माल हड़प रहा हूं। मैं तुमसे दलील मांग रहा हूं तो तुम बातें घुमा रहे हो। अब मैं तुम्हारे लिए दलील पेश कर रहा हूं, अब तुम देखते जाओ। खुदाया ये मैं हूं जवील जावेदियान। अगर तू नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर तू खुदा है, अगर तू खुदा है और इस बूढ़े शख्स का खुदा है और मेरे हक में नहीं है, तो मैं तुझसे ये चाहता हूं कि इसी वक्त यहां पर खड़े खड़े पत्थर का बना दे। अगर मैं झूठा हूं तो मुझे पत्थर का कर दे। अगर मैंने लोगों का माल खाया तो मुझे पत्थर का कर दे। अगर ये बुढ़ा तेरा भेजा हुआ है और मेरी हिदायत के लिए भेजा है तो अभी इसी वक्त मुझे पत्थर का कर दे।
जलील,
इन बच्चों के सामने ये तमाशा मत करो। जलील क्यों अपना मजाक उड़ा रहे हो? जो खुदा शरायत के तहत खुदाई करे, जो खुदा तुम्हारी इन फजूलियात के तहत अजाब नाजिल करे, वो खुदा जिसका होना और ना होना तुम्हारे पत्थर हो जाने पर मुनस्सिर हो, खुदा नहीं है। वो सिर्फ एक ख्याली खुद साख्ता मखलूक है जिसे तुमने फर्ज कर लिया है।
मैं देख रहा हूँ कि तुम अब भी मुझे ही बोल रहे हो। चलो तुम अपने खुदा से कह दो कि मुझे पत्थर का बना दे। तुम मुझसे ज्यादा सच्चे हो, तहज्जुद गुजार हो, ऐसा बहुत कुछ हो जो मैं नहीं हूं वो तुम हो, है ना? देखा ना तुमने बच्चों, तुम्हारे नाना जान पत्थर के नहीं हुए। देखा ना आदिया साहिबा आपने।
दादा जान, आपका फर्ज बताना था जो आपने पूरा कर दिया है। मेरे ख्याल से चचा की दुआ काफी पहले से पूरी हो चुकी है, उन्हें खुद ही पता नहीं है। बेहतर होगा कि हम चलें।
तुम जानती हो मुझे तुम्हारी कौन सी बात अच्छी लगती है चुटकुले छोड़ने वाली लड़की। तुम्हारी आस्तीनों में हर वक्त एक चुटकुला तैयार रहता है, लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। चुटकुले छोड़ने वाली?
आप किसी के सर पे टोपी ना रखें चचा जान, किसी सवाल के जवाब के तलबगार नहीं है। आपको कोई जवाब चाहिए ही नहीं। दादा जान हम ऐसा कुछ भी कर दें कोई फायदा नहीं, चलिए।
हाँ आप तुम लोग जा सकते हो, क्योंकि मेरे लिए ये अहम नहीं है कि तुम बेदार हो या ना हो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब इस घर के तमाम अफराद को पता चल चुका है कि तुम्हें यहां तक मेरे जितना भी अपने खुदा पर भरोसा नहीं है। मेरे हुकूक उन्नास कहलाने का भरोसा तो दूर की बात है।
मतलब ये सच है?
क्या
तुम एक बगैर जवाब के सवाल के तलबगार थे?
देखो खलील, अगर तुम ये साबित कर दो कि मैंने किसी का हक खाया है, तो हमारे मां बाप की तुर्बत की कसम, इन दोनों बच्चों की जान की कसम, तुम किसी भी आह या बद्दुआ के जरिए से दलील पेश कर दो कि खुदा तुम्हारे साथ है और मेरे साथ नहीं है। मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेगैरत और गिरा हुआ शख्स हूंगा। कहो तो अभी इन सब के सामने लिख कर दस्तखत कर देता हूँ।
मुझे तुम्हारी जिंदगी कोई जरूरत नहीं है।
ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कौन से दस्तखत? चाचा जान जो आपको कहना था वो आप कह चुके, जवाब भी मिल गया आपको, आप तशरीफ ले जा सकते हैं। अपना हाथ नीचे करो डॉक्टर।
जलील मैं किसी को बद्दुआ देने के लिए यहाँ नहीं आया था।
अरे बाबा शाहीन आप इन लोगों को रास्ता दिखाओ बाहर का। जाइए हाजी साहब जाइए।
दादा जान मैंने आपसे कहा भी कि चलिए, सामने से हटिए रामिन साहब।
रुको खलील, مطلب تمہارا خدا تمہاری ساری عمر کی اطاعت اور بندگی کے بدلے میں بھی تمہارے سننے کو تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے بھائی کے لیے بد دعا مت کرو، اس کے بجائے یہ کہہ دو کہ یہ چھت اٹھا لے۔ نہیں، اس کے بدلے یہ کہہ دو کہ اس دیوار سے ایک ہاتھی باہر آ جائے۔ تم اپنے ان کاموں سے، حتیٰ کہ آج کے ان چھوٹے بچوں کے تخیلات کو کانے نہیں کر سکتے۔
معاف کیجیے گا، قرآن کے آنے کے ساتھ ساتھ نبیوں والے معجزات کے دروازے بند ہو گئے ہیں تاکہ ایمان، عقل اور معرفت کے ذریعے سے پھیلنا شروع ہو۔ جو ایمان ایک دیوار سے ہاتھی کے نکل آنے سے یا ایک بچے کے کانے ہو جانے سے پیدا ہوتا ہے، وہ سامری کے بچڑے کی آواز سے ختم بھی ہو جایا کرتا ہے۔
مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔
اب کوئی ضرورت بھی نہیں ہے چچا۔ دادا جان، خدا کی قسم آپ صرف اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔
بات سنو زبان دراز لڑکی، اب اگر ایک لفظ بھی الٹا سیدھا تمہارے منہ سے نکلا یا ایسی بکواس دوبارہ کی تو میں خود تمہارے دادا جان کو تمہارے سوگ میں رلا دوں گا۔ ابھی تک بھی جو تمہیں منہ چلانے دیا ہے وہ بھی صرف تمہارے سجیب سے دادا جان کے سر کا صدقہ تھا، لہذا بکواس بند کرو۔ اچھا، تو تمہارا بھی عقیدہ یہ ہے کہ دیوار سے ہاتھی کا نکل آنا ایک معجزہ اور تمہارا لباس کا کام نہیں ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو شفا کے لیے دعا کرنے پر تو عقیدہ ہے نا تمہارا؟
کیا کر رہے ہو جلی؟ رامین،
یہ ہے میری اپاہج بیوی اور یہ رہے تم۔ کچھ ایسا کرو کہ یہ میری آنکھوں کے سامنے اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے۔ میری ناموس کی قسم، میرا سب کچھ میں خدا کی راہ میں لٹا دوں گا۔
بابا بس بھی کیجیے،
یا تو اپنی دعا کرو مولانا صاحب، یا پھر اپنا راستہ ناپو اور اپنی زندگی کے ان باقی ماندہ دو دنوں پر رحم کرو، کیونکہ تم نے ساری زندگی جا نماز پہ برباد کرتی۔
دادا جان، آپ کھڑے کیوں ہیں؟
تم منہ بند کر رہی ہو یا نہیں؟
حاجی صاحب، میں گزارش کرتی ہوں، چلے جائیے۔ آپ کے چلے جانے سے آپ کی عزت و احترام میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔
کیا کرنا چاہتے ہو صحاب صاحب، دعا یا اقرار؟
چچا جان، میں گزارش کرتی ہوں، آپ چلے جائیے۔
چچا جان، میں التجا کرتا ہوں، آپ سے چلے جائیے، التجا کرتا ہوں۔
دادا جان، آپ کو جان کی قسم ہے، چلیے۔
رک جاؤ، اب مجھے نہیں لگتا کہ میں صرف تمہارے باپ کو بیدار کرنے کے لیے آیا ہوں گا۔ میں ایک حقیقت سے تمہیں باخبر کر دیتا ہوں، جس نے میری دکان بیچنے سے مجھے روکا، جو مجھے اس گھر کے دروازے تک لے آیا، نہ وہ تم تھے اور نہ ہی تمہارا چھوٹا بیٹا، یہاں تک کہ میری پوتی کی بات بھی اس کی اصل وجہ نہیں تھی۔ میں یہاں اس لیے آیا ہوں جلیل، کیونکہ مجھے یہاں آنا چاہیے تھا، کیونکہ خدا نے چاہا تھا کہ مجھے یہ ثابت کر دے کہ میرے پاس تمہارے گھر آنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے، مگر تم کوشش کر رہے ہو کہ اپنے گھر والوں کے سامنے مجھے نیچا دکھاؤ، یہ جبکہ تمہاری بیوی کہہ رہی ہے کہ میں اپنی بے احترامی اور بے عزتی سے نہ گھبراؤں۔ مجھے ایک ہی مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، جسے اس بے عزتی سے بھرپور دربار میں امتحان دینا ہے۔ خلیل کون ہوتا ہے کہ خدا اس سے چاہے اور وہ اپنے آپ کو اس سے زیادہ نیچے نہ گرائے؟ تینا، لاؤ مجھے تو وہ اجازت مبارک لائی دینا۔